चलिए 158 में घराने का सबर है, इसकी आज बड़े घरानों को ज़रूरत है, और वो सारे घराने के जिनको दीन के कामों की इजाज़त नहीं मिलती उनको जाकर सुना दीजिएगा। आयत 158 में घराने की सबर है। पिछले पारे के एंड में सुना था इब्राहिम का जिक्र, यहाँ इब्राहिम की बेगम यानी मिसेज इब्राहिम का जिक्र है, बेगम इब्राहिम। इन असफ़ा वल मरवा तमिन शायरिल्ला, जो ही सफ़र मरवा की बात आती है एक माँ और बच्चा याद आता है, अम्मा हाजरा और बच्चा इस्माइल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 या 90 साल के करीब थी, अल्लाह ने हुक्म दिया बीवी और बच्चे को सहरा में छोड़ो, और ये वो उम्र होती है जब इंसान को बीवी बच्चे और बुढ़ापे की अकलौती औलाद की बड़ी ज़रूरत होती है। बड़ा बड़ा करके लिख लें या सुन लें या हाईलाइट कर लें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर उस वक्त बेसब्री का मुजाहरा करते और सब्र न करते तो क्या कह सकते थे, अल्लाह मैं नहीं ऐसा कर सकता, मेरी बीवी बच्चा चला गया, मेरी रोटी कौन पकाएगा, खाना कहाँ से खाऊंगा, मेरे कपड़े कौन धोएगा। आज यही मसले हैं ना हमारे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ नहीं किया। जुमला नोट कीजिएगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए अपने घर को वीरान कर दिया, खुद अकेले रहना गवारा किया और बीवी बच्चे को छोड़ आए। अगर उस दिन इब्राहीम ये फैसला न करते तो बताइए कि आज वहाँ इतनी खूबसूरत यादगार खाना कावा के तौर पे कायम होती। जाके देखिए, शायद कहते हैं 16 लाख पाकिस्तानी थे इस रमज़ान में, शायद इससे भी ज़्यादा होंगे। जगह नहीं है नीचे पाँव रखने की, ये किन की कुर्बानी है। याद रखिए अल्लाह कुछ घरानों को चुनता है। आज अगर आप में से कुछ को चुना हुआ ना, इसकी गवाहियाँ आने वाला वक्त देगा। आज तो कोई पजीराई नहीं है, हम भी कहते हैं क्या ज़रूरत थी और क्या ज़रूरत है इसकी। नहीं, उस वक्त इब्राहिम ने यह सोचा भी ना होगा कि यहाँ इतने लाखों करोड़ों लोग आएंगे। कल जब इब्राहिम ने एक बंजर और वीरान जगह को आबाद करने के लिए अपने घर को वीरान किया था, क्या आज हम सब को अपने घरों के तकाजे अल्लाह के तकाजों से आगे ले जाएंगे? पूछिए ज़रा ख़ुद से, क्यों मुश्किल लगता है आना, ये तो ऑनर है, ये हर एक को नहीं मिलती इज्जत, इसके लिए नाक की लकीरें लगा लेंगे तो निकलेंगी। और अगर रास्ते में मजबूरी है तो गुनाह याद कीजिए, किन गुनाहों पे अल्लाह ने घर वालों को रुकावट बना दिया, वरना ऐसा होता नहीं है। तो फिर क्या सीखा आपने, मैंने घरानों को लेकर सब्र करना है। उसके बताए 164 आयतुल आयात कहते हैं इसको, 7-8 निशानियाँ एक ही आयत में, कायनात की निशानियाँ। अल्लाह कहते हैं आँखें तो खोलो, गौर से देखो, अल्लाह ने क्या कुछ बना दिया, लेकिन कुछ लोग दूसरों में खो जाते हैं। आज लोगों को वो रब नहीं दिखता जो गैब के पर्दों में है, और वो दिखते हैं जो ज़ाहिर दुनिया में इधर उधर दूसरों को माइल किए हुए हैं। फिर इसके बाद आप देखिए आयत 165 से पारे का वो हिस्सा शुरू होता है जहाँ से अल्लाह ताला अपनी पहले मार्फत करवाते हैं कि मैं कौन हूँ, फिर शिर्क की कुछ कबाहत, फिर इसके बाद कुछ अहकामात बयान करते हैं। क्योंकि जब हम किसी को कोई दीन की बात बताते हैं तो वो कहता है मैं क्यों करूँ, कहते हैं नमाज़ पढ़ें, वो कहता है क्यों पढ़ूँ। आज माओं का ये हाल है, कहती हैं बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए कि अगर बच्चों को कहे नमाज का और ये ना बताएं कि अल्लाह कौन है तो वो नमाज़ नहीं पढ़ेंगे ना। तो अल्लाह ताला आपको मुझे यहाँ अपना आप दिखाता है, पहाड़ों से लेकर दरख्तों फूलों कायनात की एक एक चीज़ को देखो, हर एक में रब की निशानी है। चंद नुक्ते मुहासबे के नोट करें, क्या मैं कायनात पे तदब्बुर करती हूँ, किस किस को शौक़ है नेचर ऑब्जर्व करने का, और वो भी आज टीवी पे ही डॉक्यूमेंट्रीज, बीबीसी लंदन, अर्थ, बाहर निकला करें, ये गर्मी में भी एक अपना मज़ा देखा करें, कैसे दरख्तों के पत्ते सूखे होते हैं और बाद में हरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जब मैं समंदर की सैर पर जाती हूँ तो क्या उसको देख कर अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा लगाती हूँ? आप में से किस किसने कभी ज़िंदगी में समंदर नहीं देखा, नहीं देखा, अल्लाह के बंदो कराची तो चले जाओ, बाहर कहाँ जाना है, ये कोर्स ख़त्म होगा सब कराची जाए और समंदर देख कर आए। इधर कोई है करीब कोई छोटा मोटा समंदर का बच्चा, झील पे इनको किसी पिकनिक पे ले जाए, जाना चाहते हैं पिकनिक पे, चले प्लान करें इंशाल्लाह, आप थोड़े से सेट हो जाए आपको लेके जाएंगे पूरे काफले को इंशाल्लाह। क्या कश्ती में बैठकर मुझे अल्लाह की याद आती है, क्या रात को दिन में बदलता देखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, कहीं जाने की ज़रूरत है, आज रात को देखिएगा ये कहाँ से सफ़ेद छतरी काली छतरी में बदल गई। और दिन को रात में ढलता देख कर के अच्छे दिनों से बुरे और बुरे दिनों से अच्छे दिन पलटने का यकीन रखती हूँ। ये रात को दिन से और दिन को रात से देखे तो ये सोचें कि मेरे भी दिन पलट जाएंगे, तो पता चला कि कायनात हमें सबक देती है और कि अल्लाह ताला मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। किस किस को लगता है? वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बल लिल्लाह। तो आइए ज़रा पता लग जाएगा, इसका एक टेस्ट है। अल्लाह की मोहब्बत जो है उसमें शराकत बर्दाश्त नहीं होती, अल्लाह को शराकत पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारी मोहब्बतों की बहुत सारी चीज़ें दुनिया में रखी, लेकिन चाहिए क्या कि इन सब से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत हो। कैसे पता चले आपको कि आपको अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत है या अपनी औलाद से? अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत है तो शौहर से, माँ बाप से। इसका एक छोटा सा मेयार है, लिखिए। आम हालात में पता नहीं चलता कि अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। हर एक ये कहता है मुझे बड़ी मोहब्बत है, फ़र्क तब आता है जब तकाबुल होता है। एक तरफ अल्लाह का कोई तकाजा और एक तरफ बच्चे का तकाजा। बच्चा ऐसी चीज़ का तकाजा कर रहा है जो नाफरमानी की है, अल्लाह को नाराज़ करने की है। आप बच्चे को खुश करके वो काम कर देती हैं, अल्लाह की मोहब्बत ख़त्म। तो बस समझ लीजिए कि जब अल्लाह का हुक्म छोड़कर बंदों को खुश करते हैं, हलाल छोड़कर हराम की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद फिर यही मामले आते हैं और ये सारा दिन इम्तिहान होते हैं हमारे। हर शादी खुशी गम पे होता है। तो आप बिरादरी, ख़ानदान, रिश्तेदार सब के नाम लिखकर चेक कीजिएगा आज घर जाकर, किससे ज़्यादा मोहब्बत है अल्लाह की निस्बत। जहाँ टकराव आएगा वहाँ बात सिर्फ अल्लाह की माननी है। और इसके बाद आयत 165 का आखिरी हिस्सा और 166 और 167 में अल्लाह ने बता दिया, जो मर्ज़ी कर लो, मेरे ईमान वाले मुझसे मोहब्बत में शदीद हैं। मुहासबा कीजिएगा अपना, क्या मैं में किसी गैर अल्लाह से उम्मीदें तो नहीं लगाती? क्या मैं अपना वक्त ज़ाया तो नहीं करती गैरों से मदद मांग मांग के? कल क़यामत के दिन अपने आप को इस हसरत का शिकार तो नहीं करना चाहती कि काश अल्लाह मुझे एक बार फिर दुनिया में भेजे और मैं अपने आप को इनसे बेनियाज कर लूँ? एक जुमला लिखिए, जैम है ये, जितना वक्त दूसरों को राज़ी करने पर लगाते हैं, अगर इससे आधा वक्त भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए लगा देंगे तो अल्लाह राज़ी हो जाएगा। बंदे कभी नहीं राज़ी होते, ये लिख लें जुमला। इम्पॉसिबल टास्क है जो आपने अपने लिए रखा है। फिर इसके बाद आयत 68 से कुछ अहकामात की बातें और साथ ही शैतान के हरबे भी हैं। शैतान के धोखों में एक बड़ा धोखा अपना बन के आता है। ये कभी नहीं कहता ये बड़ी ख़राब चीज़ है इसको ले लो, ये बुरा काम है इसको कर लो, बल्कि शुरू में इंसान को शैतान कैसे बुलाता है? सबसे पहले कहते हैं देखो अल्लाह के रस्ते में खर्च करोगे तो फ़कीर हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, देखो तुम्हारी इतनी ज़रूरतें तो है ना। जब अल्लाह के नाम, अल्लाह के रस्ते, अल्लाह के दीन पे आप खर्च करने लगते हैं, यही सोच आती है। बाज़ दफ़ा में दीन के नाम पर एक चीज़ ख़रीदनी मुहाल हो जाती है। 10 जोड़े 11वां जोड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, 11 जोड़े हैं 12वां जोड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, 4 बेड सेट पहले ही पड़े में 5वां लेना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बात नहीं ले लो। लेकिन जहाँ दीन की बात आएगी शैतान के का सोच लो खर्चा करना पड़ेगा। यही असल में जमा और तफरीक का फ़र्क है, यही खड़े और खोटे का फ़र्क है। शुरू में रुको आता है, अब क्या होता है कि बंदा नहीं खर्च करता तो बहुत पैसा लगता है, तो जब पैसा जमा होता है ना फिर उसको ख्वाहिशों पर लगवाता है, एक एक बात पर, हर ख्वाहिश पर दम निकलता है, हज़ारों लाखों शादियों और खुशियों के नाम पर लगवाने लगता है और फिर गलत चीज़ों पर माल लुटने लगता है, खपने लगता है। कमाओ ऐश करो, बच्चों की शादी है, थोड़ी सी मस्ती, चलो कोई नहीं, रिश्तेदारों में टौर बन जाएगा, इज्जत होगी, बड़ी गाड़ी लो चाहे वो मुड़े ही ना गली में से, लेमोजिन में बरात ले जाओ, पता चला बरात रुकी हुई, हुआ क्या, वो लेमोजिन ही नहीं लड़के के घर की गली के अंदर मुड़ रही, बिलीव मी ये सानिया हुआ किसी के साथ, अखीर लड़की को निकाल के पैदल लेकर गए और लेमोजिन वापस की, वहाँ तो कुछ नहीं होता, वो तो मज़े हैं ना। तो जहाँ दीन आता है सबसे पहला सवाल पैसे हैं, पैसों की चीज़ है कि फ्री है? फ्री चार पकड़ेंगे बाहर जाकर, एक बुकरैक पे और दूसरी सीढ़ियों में और तीसरी घर में जाकर छोड़ देंगे। दीन सस्ता कर दिया हमने, मुजरिम है वो लोग जिन्होंने आज के दौर में दीन को सस्ता कर दिया, बेवकूत कर दिया हमने, कदर ही ना रही। आज हमें दीन के नाम के साथ ही लगता है कि ये तो मुफ्त का खाता है, माले मुफ्त दिले बेरे, तभी इस दीन की कदर भी कोई नहीं, लेके भी कोई नहीं कदर हो रही। दुआ करें अल्लाह में कदर वालों में कर दे। फिर उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शैतान की तरफ से खुलता है जो कदम ब कदम गुनाहों की तरफ ले जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह शैतान के नक्शे कदम पे चलने से बचाए। उसके बाद देखिए आयत 170 में एक किरदार है जिनका मामला क्या है, जो अपनी अकल और समझ इस्तेमाल किए बगैर अपने बड़ों के पीछे चलते हैं। کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ بیان کیا گیا. تو آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا پیچھے. پھر آیت 177 جس کو آیت بر کہتے ہیں, وسیع پیمانے پہ نیکیاں کرنا, چھوٹی بھی بڑی بھی. اس پہ ایک پورا لیکچر ہے, دو سی ڈیز پہ تھا, کبھی بھی کسی دن بیٹھ کر سن لیجئے, آپ کا کانسیپٹ اے ٹو زی اسلام کا کور ہو جائے گا انشاءاللہ. اس طرح ترتیب ہے اسلام, شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اینڈ پر کیا چیز ہے. چند نقطے محاسبے کے کر لیجئے اس آیت پہ. کیا میں وعدے کر کے پورے کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرتی ہوں؟ کیا میں تنگی اور مصیبت میں صبر کرتی ہوں؟ مجھے اسلام کی خاطر اگر کوئی مشکل سہنی پڑے تو کیا اس پہ صبر کرتی ہوں یا واویلا مچا دیتی ہوں؟ اللہ عمل والا بنا دے. پھر آیت 180 میں اسلام کی خوبی, زندگی بھر کے احکامات, حتیٰ کہ بستر مرگ پر کیا کرنا ہے اس کی بھی بات ہے, کہ مرتے وقت ہی اللہ کی بات مان جاؤ اور وصیت کے احکامات. اصل میں یہاں سے پارے کینڈ تک اقسام بر ہیں, نیکی کے مختلف کام ہیں, اس میں وصیت بھی ہے, اللہ کے رستے میں خرچ بھی ہے. دیکھیے خرچ کیا ہے, مال. آپ کسی کو بھی دے دیجیے اپنی زندگی میں, رشتہ دار کو, غریب کو, اپنے کو, پیارے کو, اس کو ہبہ کہتے ہیں. یہ میری کتاب ہے, میں آپ کو میں سے جس کو دے دوں ہبہ, کوئی حرج نہیں. کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے کسی کو دیا جائے, اس کو وراثت میں اللہ نے بانٹ دیا, میرے آپ کے اختیار میں نہیں رکھا. ایک مثال سے سمجھیے, آپ کے پاس $100 ہیں, ₹100 لگا لیجیے آج, چلیں ₹1000 لگا لیں. آج آپ اس ₹1000 کو پورے کا پورا خرچ کر سکتی ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ میرے مرنے کے بعد اس ₹1000 کو فلاں مسجد کے ڈونیشن باکس میں ڈال دو, تو آپ نہیں کہہ سکتی. زیادہ سے زیادہ پھر ₹1000 میں سے ₹333.33 آپ دے سکتی ہیں, باقی ₹666 آپ کے رشتہ داروں کے ہیں. اللہ کسی کا حق مار کے دوسروں کو دینے کا حکم نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا, ابن ماجہ کی روایت ہے 2704, آدمی 70 سال تک نیک لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے, جب مرنے کے وقت وصیت کرتا ہے تو ناانصافی سے کرتا ہے, اور اس طرح اس کا انجام برے کام پر ہوتا ہے, تاکہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو وصیت کا طریقہ بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد آیت 183 سے روزوں کی بات ہے. آیت 185 میں عید کی نماز ہے اور تکبیرات کی طرف اشارہ ہے. روزے تو رکھ چکے ہو, عید کے دن سوتے نہ رہ جاؤ, فجر بھی پڑھو, تکبیرات کہو, جا کر عید کی نماز پڑھو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے رمضان کے روزے پورے کرائے, نیکیوں کی توفیق دی, اور اس کے بعد کھاؤ پیو, سب کو ملو ملاؤ, اچھے کپڑے پہنو. 186 میں دعا کا ذکر ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور اس کا بھی تعلق روزے سے ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ سرگوشیاں. اگر آپ کو اللہ سے سرگوشیاں کرنی آ گئیں تو خیر کے راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے. کس سے سیکھنا ہے آپ نے دعا کرنا؟ بابا جی سے, کہ استاد رکھ لیں کوئی, اپنے بچوں سے سیکھیے. ایک معصوم بچہ پہلے کہتا ہے ماما یہ دے دیں, آپ نہیں دیتی, ماں نہیں دیتی, پھر مچل مچل کر اپنی بات منواتا ہے. جس ماں نے نہیں بھی دینا ہوتا اس کا مچلنا دے کر کہتی جاؤ اس کو دے دو, یہ چپ نہیں کرے گا. اس طرح اپنے رب سے مانگیے, تدرواں و خفیہ, رو رو کر پکاریے, مخلوق کے سامنے نہیں ہاتھ پھیلانا. بچہ صرف ماں سے مانگتا ہے, یہ بھی نوٹ کیجئے گا, یہ الگ بات ہے بعد میں ہم بگاڑ کے سب کے آگے ہاتھ اٹھا دیں. تو اپنے رب سے مانگیے, کڑی شرط ہے کہ تم بھی تو میری باتیں مانو. کیا نقطہ نکلا اس میں سے؟ اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنا ہے. کیا میں اللہ کو مانتی ہوں؟ جب میرے بچے میری بات نہیں مانتے تو کیا مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں بھی رب کی بہت سی باتیں نہیں مانتی؟ اور آیت 187 میں محاسبے کا نقطہ کیا ہے؟ کہ ہر بیوی اپنے بارے میں سوچے کہ بیوی ہونے کے ناطے کہ میں اپنے شوہر کی برائیاں تو نہیں کرتی, اور شوہر دیکھے کہ کیا میں اپنی بیوی کے عیب تو نہیں دوستوں میں بیان کرتا. آیت 188 خاص طور پر رشوت کے موضوع پہ, اس کو پاکستان میں عام کر دیجئے. سارے وہ طریقے جو رزق حرام کے ہیں, سود, رشوت اور اللہ کی نافرمانی کا ساز و سامان. دیکھیے روزے کی آیتوں کے فوراً بعد رزق حرام کی بات کیوں کی؟ کہ رمضان میں حلال سے رکے تھے, 11 مہینے حرام سے بھی رک جاؤ. وہاں جائز چھوڑا تھا, یہاں ناجائز چھوڑ دو, پریکٹس ہو گئی. اللہ کرے کہ رمضان کے بعد ہماری بھی یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اور اگر رمضان کے روزوں نے یہ عادت نہیں ڈالی تو یاد رکھیے پھر آگے جا کے تو مسئلہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر پارے کین کی طرف چلتے ہیں اگر, تو 189 میں چاند کا ذکر ہے. یس سلونا کا نیلا ہلا. عرب معاشرے میں چاند کے سب بڑے توہمات تھے, وہم کرتے تھے. چڑھتے چاند کی تاریخیں यानी यकम से 14 तक बड़ी बढ़ोतरी की है, और 14 के बाद घटता चांद, बड़ा मनहूस है। शादियाँ नहीं करते थे, कहीं हमारे तो नहीं ऐसा होता, करता कोई? 13 तेज़ी का लफ्ज़ सुना हुआ, ठीक है। अल्लाह ने ये सब ख़त्म कर दिया, शादी का दिनों से कोई ताल्लुक नहीं, जब जहाँ मर्जी रख लो। चांद का असल मकसद ये नहीं है, बल्कि ये तो हज के और बाकी दिनों का हिसाब बताया जाता है। अपना एक मुहासबे का नुक्ता नोट करिए, क्या मैं ऐसी वहमी बातों में तो नहीं पड़ती? अच्छा, एक और बड़ी अजीब रस्म थी उनकी, हज या उमरे का अहराम बांध के घर से निकले, कोई चीज़ भूल गए, छतरी भूल गए, वापस ना आते। कहते ना ना, बगैर हज करके वापस आ जाएं, तो घर के बैग से आते, दीवारों से कूद के। तो अल्लाह ने कह दिया कि कामों को ठीक तरह किया करो, घरों के पिछवाड़े से दाखिल ना करो। क्या पता चले इस्लाम आपको मुझे ये सिखाता है कि काम ठीक तरीके से करो, गलत से ना करो। फिर आयत 190 से 193 में ज़्यादती और फितने की बात है कि इस्लाम यहाँ लड़ने की इजाज़त सिर्फ एक मकसद के लिए दे रहा है, और वो क्या, कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए, फितने का खात्मा हो। फितने में तीन चीज़ें लिख लें, कत्ल, जुल्म और ज़्यादती। ज़मीन अल्लाह की है, यहाँ निज़ाम भी अल्लाह का हो, उसके निज़ाम के ख़िलाफ़ जहाँ काम होंगे वहाँ जिहाद होगा और दीन नाफिज किया जाएगा। सबसे पहले दावत के ज़रिए, बात ना बने तो फिर उसके बाद अगले काम। अल्लाह के नबी जब किसी को जंग के लिए भेजते तो कहते कि औरतों पर हाथ ना उठाना, बच्चों पर ना हाथ उठाना, बूढ़ों को ना मारना, और जो लोग अपनी इबादत गाहों में बैठे इबादत कर रहे हैं इनको ना पकड़ना। ये है सच्चा इस्लाम जो हमने कभी पढ़ा भी नहीं है। फिर आयत 194 में सोचने की बात है, क्या मैं अल्लाह की हदों को तो नहीं तोड़ती? क्या मैं खाने पीने में इसराफ तो नहीं करती? क्या मैं खर्च करने में हद से तो नहीं बढ़ जाती? मुहासबा करते जाएंगे, इंशाल्लाह आपका अपने नफ्स पे काबू बढ़ता जाएगा। 195 में माल खर्च करने की बात है, दीन को गालिब करने में माल लगा दो, वरना तुम अपने हाथों खुद को हलाकत में डाल दोगे। जो लोग दीन पे खर्च नहीं करते, याद रखिए फिर उनको हथियारों पे खर्च करना पड़ता है। आज भी गैर मुस्लिम अपनी आमदनी का 25% अपने चर्च को देते हैं, इबादत गाहों को देते हैं। आज हम मुसलमान लगवियात और फजूलियात पे कितना खर्च करते हैं? कमाते क्यों हैं? कि बच्चे की शादी करें, घर बनाना है, अच्छा खा लो पी लो, रिश्तेदारियाँ निभाओ, और जब दीन पे खर्च करने से पीछे होंगे तो वही होगा जो आज हो रहा है। दीन पे खर्च करना सबसे नागवार है हमें आज, वल्लाही मान के नंद मानिए। फर्नीचर पे, जेवर पे, घर पे, गाड़ी पे, खिलाने पे, पिलाने पे, दीन पे तो ऐसे लगता है कि दुखती रख पे पड़ गया। तो ये हमारे जवाल की दलील है, अल्लाह हमें इससे बचा ले। फिर आखिर में आयत 200 से 201 में नुक्ता क्या है कि दुनिया के गमों से आज़ाद करके दिल को आखरत का गम लगा लो। डिप्रेशन परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी अगर तुमने आखरत का गम लगा लिया। नियत कीजिए कि लोगों की रूहानी भूख मिटानी है, कुरान की तालीम को आम करना है। जो लोग अभी तक किताब हिदायत से दूर है इनको कुरान की तरफ बुलाना है, कुरान से जोड़ना है। और असल बात यह कि इंसान के दिल में जो चीज़ खुद जम जाती है ना, वो फिर दूसरों को भी जमा लेता है, वही हर रूप में नज़र आती है। हमारी दुआएं, हमारी सोचें, सब हमारा पोल खोलती हैं दुआओं की सूरत में। दिल की इस्लाह कर लीजिए, बाकी सारा कुछ भी इस्लाह होगा। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतं वफिल आखिरति हसनतं वक़िना अज़ाबन नार। जो हम दुआ मांगते हैं इसकी रोशनी में हम अपने आप को देखेंगे कि हमारी दुआएँ सिर्फ दुनिया की तो नहीं होती। और उसके बाद आप देखिए मुहासबे का नुक्ता क्या है, आयत 203 में, कि क्या मैं अल्लाह के सामने पेश होने के लिए तैयार हूँ? मैं दिन में कितनी बार अपने आप को मैदान महशर में खड़ा हुआ पाती हूँ? कितनी दफ़ा इस जवाबदेही के एहसास में हूँ कि मैंने महशर में खड़ा होकर अल्लाह को जवाब देना है? फिर आए 204 से 208 में दो किरदार हैं, पढ़ लीजिएगा इनके बारे में, कैसे दो मुख्तलिफ़ किरदार अल्लाह ने आपके मेरे सामने मेयार बना दिए कि तुम अपनी जान और नफ्स को अल्लाह के आगे बेचते हो, या फिर तुम दुनिया में ही सब कुछ लेके चलते हो। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको मुझे अपने नफ्स पे सब्र करने वाला बना दे। आज चलते जाएंगे, कल अल्लाह आपको दौड़ने वाला बनाएगा। और उदखुलु फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है तो थोड़े तो होइए, एक एक कदम तो अंदर कीजिए। बच्चा चलते चलते दौड़ना शुरू कर देता है। फिर आए 213 में अकीदे की बात है। अकीदे का इख्तलाफ बहुत बड़ा इख्तलाफ होता है। जो लोग बेइल्म होते हैं ना, वो जहालत पे रहना पसंद करते हैं लेकिन सच्चा इल्म नहीं लेना चाहते, और इल्म वालों का इख्तलाफ दलील की बुनियाद पे होता है। ये दुआ कीजिए अल्लाह में हक बात का दाई कर दे। इल्म भी लें तो वो लें जो सच्चा इल्म हो। अल्लाह के नबी की 13 साल मुखालफत जो थी वो सिर्फ इस वजह से हुई थी कि बाप दादा के तौर तरीके वो छोड़ना नहीं चाहते थे। और आज भी बहुत सारे लोगों को इस्लाम से दूर यही चीज़ करती है कि क्या हमारे बाकी गलत थे। तो आय 216 पे मुहासबे का नुक्ता नोट कीजिए, क्या मैं अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी हूँ? क्या मुझे हिकमत ना भी समझ आए तो उलझती तो नहीं हूँ? आसान तक रहो शैन वह खैरुल लकुम। और इसी तरह आय 219 पे मुहासबा कीजिए, जब दीन के किसी मौजू पे सवाल पूछती हूँ तो मानने की नीयत से पूछती हूँ या रुख्सत ढूंढने के लिए? और इसके बाद आयत 221 से पारे के तकरीबन आखिर तक दो आखिरी रुकू छोड़ दीजिए, एक ही मौजू है, निकाह, तलाक और इद्दत। इतने पर्सनल मौजू को इस कुरान में रखा क्योंकि दीन मामलात का नाम भी है। माशरे को वो कवानीन दिए पहले जिससे ज़िंदगी अच्छी हो, और फिर घरेलू ज़िंदगी को अच्छा करना चाहा। औरतों के मसाइल का हल कुरान में है, शोहर बीवी के झगड़ों का हल इस कुरान में है, और एक दूसरे के माल पे बातें करनी, ये कुछ। तलाक हो गई, जान छूट गई, बस कीजिए, अल्लाह से फजल मांगिए। आप एक दूसरे की बुराइयाँ क्यों कर रहे हैं? असल बात है कि हमारे पास वक्त बहुत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पारा था, 2-3 मिनट में इसका रिकैप कर लीजिए, और अल्लाह का इस पर लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि आप यहाँ बैठ कर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने वाले बने हुए हैं। पूरा पारा दूसरा, पहला मौजू, तब्दीली एक इम्तिहान है। मौसम, जगह और हालात की तब्दीली को खुशी से कबूल करना, यह हमने तहवीले किबला से सीखा। अल्लाह की खशियत लेनी है, किसी भी गलत काम का इरादा हो तो अल्लाह की खशियत की वजह से उस काम को छोड़ दीजिए, और किसी भी इम्तिहान में उम्मीद और शुक्र को नहीं छोड़ना क्योंकि ये आजमाइश होती है। फिर हमने सब्र पे जो बातें की उसका खुलासा, अपने आप को रोक लेने का नाम सब्र है। गैर मुस्लिमों के प्रोपेगंडे पर मुसलमानों को सब्र करना है। तीन सब्र हैं, मसाइब पे सब्र करते हुए अल्लाह की तरफ रजू करना, रिसालत की जिम्मेदारियों पे सब्र की तलकीन, और नफ्स की तरबियत सब्र के साथ। फिर आगे आप देखिए, हलाल और हराम की बात देखिए कि शैतान के बहकावे से बचते हुए खाने पीने में हलाल और तैयब इख्तियार करना है। बोलिए इंशाल्लाह। जहाँ मुफादात का तसादम हो तो मुआशरे और रिवायात के साथ तसादम की सूरत में हक के रास्ते को इख्तियार करना है। नेकी की इकसाम में सारी नेकियों को लेकर सिद्दीक और मुत्तकी का मुकाम हासिल करना है। फितना और फसाद जहाँ हो तो हमने न माले गनीमत न किश्वर कुशाई इस मौजू पे नहीं बल्कि जंग फितना और फसाद के खात्मे के लिए करनी है। नेकियों में सबकत ले जानी है क्योंकि मोमिन की ज़िंदगी का मरकज़ी नुक्ता नेकियों में आगे बढ़ना होता है। जितना नेकियों में आगे बढ़ते जाएंगे अल्लाह ताला आपको मज़ीद आगे बढ़ाता जाएगा। फिर इसी तरह से नेकी के कामों पर जमना और गुनाह से रुकना सब्र की खूबसूरत किस्म है। बैतुल हम जैसे इनामात सब्र का खूबसूरत नतीजा है, अभी आपने हदीस सुनी है। अल्लाह के दीन के नुमाइंदे बनना है यानी उम्मत वसत के फ़र्द, इनको सब्र करना पड़ेगा। सारे नुक्ते याद आ गए ना? अपना मुहासबा करने के लिए सब्र से अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होना, और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना, और सब्र की तस्वीर का एक खूबसूरत किरदार बनना। करें कि अपने दिलों को दुआ में मशगूल कर लें, रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन वफिल आखिरती हसनतन। दुनिया के गमों से आज़ादी मिलेगी और आखरत के गम में मगन हो जाइए। दावत के काम में मसरूफ़ होना, अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने की कोशिशें और जद्दोजहद करनी है। बोलिए, अल्लाह की दावत पे लब्बैक कहना है, अपने रब से ताल्लुक़ को जोड़ना, अपनी समझ और अक़ल पर अल्लाह के अहकामात को तरजीह देनी है। कायनात पे तदब्बुर करना, अल्लाह से मोहब्बत करने का अनोखा अंदाज सीखा आज हमने। एक अल्लाह की इबादत पर जमकर सब्र से ज़िंदगी गुजारनी है। फिर हमने ज़िक्र में देखा कि सही तरीके से अल्लाह का ज़िक्र करना है कसरत से, और फ़र्ज़ इबादात में रोज़े की बात थी, तकवा हासिल करने के लिए रोज़े रखने। सफ़ा मरवा की बात पड़ी तो बीबी हाजरा के सब्र का ज़िक्र था, तो किसी मुश्किल में भी रदीतु बिल्लाहि रब्बन कहना है और दुआ करनी है क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के करीब है। हज और उम्रे के बारे में हमने देखा कि तकवा के इरादे से हज करना और अमन के साथ रहना, सिर्फ दुनिया तलबी में नहीं लगे रहना, आखरत की भलाइयाँ भी मानना। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना वफिल आखिरती हसना। और आखिर में देखा कि शायद कोई चीज़ हमें बुरी लगे, बट आसान तक रहो शैयन वहुआ खैरुल लकुम। अल्लाह का हमारी भलाई को ज़्यादा जानना, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होने वाले काम पे मायूस मत होइए, और शादी ब्याह के मामले पर अकीदे में समझौता नहीं करना کسی شرک کرنے والے سے اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ نہیں جوڑنا، اور طلاق دیتے ہوئے بھی آسن معاملہ کرنا ہے، بھلے طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے، قانون طلاق ہے۔ بیوگی کی 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، پھر معروف طریقے سے دوسرے نکاح کے بارے میں سوچنا ہے، اور دین کی خدمات میں درست نیت، خوب محنت اور دعا کے ساتھ گھر سے نکلنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کی میری اس میں مدد کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔